मेरे बहुत बहुत प्यारे दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 5 अप्रैल 2016 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और इसी के साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन नौ नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी के सितंबर अक्टूबर में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशंस कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं लव कुमार, आप बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हैं, दीप राज सिंह, आप जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं, अजीत कुमार, आप मथुरा उत्तर प्रदेश से हैं, दीपक कुमार बेगूसराय बिहार से हैं, शांतन कुमार जहानाबाद बिहार से हैं, शैलेश कुमार यादव आप जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं, सोनू अग्रवाल आप बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हैं, हिमांशु कुंडल भोपाल मध्य प्रदेश से हैं और अखंड देश ओझा गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो लव, दीपराज, अजीत, दीपक, संतन, शैलेश, सोनू, हिमांशु और अखंडेश, आप सभी को मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से आमंत्रित करता हूं और आप सबका बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस क्लासेस और रजिस्ट्रेशन के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मुझे आप सबको देने के लिए कहा गया है और सूचना यह है कि जो सितंबर अक्टूबर में 15 दिन की क्लासेस होने वाली हैं, आपको मालूम है कि उनके रजिस्ट्रेशंस अभी हो रहे हैं। फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसमें कुछ डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि डिस्काउंटेड सीट्स अभी हैं। अब वो लगभग लगभग खत्म होने के करीब आ गई हैं। डिस्काउंटेड सीट का जहां तक सवाल है तो जो भी आप लोगों में से क्लासेस में आने के लिए इच्छुक हैं और डिस्काउंट का फायदा लेना चाहते हैं, उनके लिए सूचना है कि जल्दी से जल्दी वे अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। 2-3 दिन के अंदर हो सकता है कि ये डिस्काउंट खत्म कर दिया जाए और फिर अलग तरीके से रजिस्ट्रेशन होंगे। तो ये महत्वपूर्ण सूचना मुझे आप लोगों को देनी थी। दूसरी जो सूचना है मित्रों, वो ये कि जो हमारा फोर्थ बैच था उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजना शुरू कर दिया गया है, उनको भेज दिया गया है। पहली खेप उनके पास चली गई है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स के मेल भी आए हैं जिन्होंने मिलने की बात कही है। तो आप सबसे, फोर्थ बैच के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अब अपने मेल लगातार चेक करते रहें और जिनके पास भी अपने मेल एड्रेस नहीं है प्लीज वे अपने मेल एड्रेसेस तैयार करने के बाद तुरंत एकेडमी को सूचित कर दें, क्योंकि यदि उनके मेल एड्रेसेस एकेडमी के पास नहीं होंगे तो उन्हें कोई भी इस तरह की सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जा सकेगी। दोस्तों, एक थोड़ी दुखद खबर यह है कि हमारे जो कैप्टन राहुल राय हैं, जो हमारे सेकेंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं और बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं और जो अभी MIT अमेरिका में पढ़ रहे हैं, मेल आया है मेरे पास उनके एक दोस्त का कि उनके दादा, राहुल राय के दादा नहीं रहे। तो मैं आप सब अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी टीम की ओर से, मैडम की ओर से और अपनी ओर से भी राहुल राय के दादा जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अपने चरण में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। साथ ही हम सब यह भी प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके परिवार के सभी सदस्यों को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। राहुल, हम सब तुम्हारे साथ हैं। निश्चित रूप से दादा का चले जाना एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे कि हमारे घर के सामने कोई बहुत बड़ा वट वृक्ष था और वो वट वृक्ष अचानक एक तूफान आया और ढह गया हो, एक विचित्र किस्म का सूनापन का एहसास दे जाता है। और मैं और हमारे सभी प्रिय श्रोता तुम्हारे इस सूनेपन को समझ सकते हैं, लेकिन इस सूनेपन में हम सब तुम्हारे साथ हैं। जीवन की गति ही यही है, प्रकृति की नियति ही यही है, और हमारे पास इसके सिवाय इसका कोई इलाज नहीं कि हम इसे स्वीकार करें। मुझे विश्वास है कि तुम भी इसे पूरे शक्ति के साथ, पूरी क्षमता के साथ और सुदृढ़ता के साथ इस सत्य को स्वीकार करोगे और अपने अच्छे कामों के जरिए और अपनी उपलब्धियों के जरिए अपने दादा को सही मायने में श्रद्धांजलि अर्पित करोगे, ताकि वो तुम्हारी सफलताओं को जब देखेंगे ऊपर से तो उनकी आत्मा प्रसन्न होगी और उस प्रसन्नता के बदले तुम्हारे ऊपर उनके आशीर्वाद की वर्षा होगी। मित्रों, अब मैं आता हूं लाइफ मैनेजमेंट वाले अंश पर। मित्रों, लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत मैं आज आप लोगों से थोड़ा सा प्रत्युषा बैनर्जी के साथ जो घटना घटी है उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। नहीं जानते कि प्रत्युषा बैनर्जी ने आत्महत्या की है या उनकी हत्या की गई है, यह तो बाद में पता लगेगा इन्वेस्टिगेशन के बाद, और पता नहीं तब भी सही सही पता लग पाता है या नहीं लग पाता है। लेकिन अभी तक जो साक्ष्य मिल रहे हैं, जो स्थितियां हो रही हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अखबारों में जो कुछ आ रहा है, चैनल्स में जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, दोनों ही स्थितियां हैं। लेकिन चलिए, जब तक कुछ बात पता नहीं लग जाती है, स्पष्ट नहीं हो जाता है, तब तक हम थोड़ी देर के लिए इसे आत्महत्या का मामला मान लेते हैं। अगर प्रत्युषा बैनर्जी ने वाकई आत्महत्या की है तो सुन रहे हैं आपकी अलग अलग कारण सुनने में आ रहे हैं। कभी कहा जाता है जा रहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, कभी ये कहा जा रहा है कि जो उनका बॉयफ्रेंड था उसकी जो बेवफाई थी उससे वो बहुत त्रस्त थी। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि उनके कैब का कैरियर ढलान पर था इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया, जबकि ठीक इसके विपरीत भी बातें कही जा रही हैं कि नहीं, वो आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ थी, लगातार उनके पास नए नए काम के ऑफर आ रहे थे। आप देख रहे हैं कि सच किस तरीके से फंस जाता है, सच तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, उलझ जाता है, और बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत बातें आपको सुनने को इस संदर्भ में मिल रही हैं। मित्रों, लेकिन यहां जो मैं बात करने जा रहा हूं वो जीवन के संदर्भ में एक अलग ही तरह की बात है। मुझे कभी कभी लगता है कि सच में हम ऐसी स्थिति में क्यों पहुंचते हैं, या ये कह लीजिए कि अपने को ऐसी स्थिति में क्यों पहुंचा देते हैं जहां या तो हमें ये कदम उठाना पड़ता है या दूसरा हमारे के लिए इस तरीके से हमारे खिलाफ कदम उठाता है, चाहे आत्महत्या हुई हो चाहे हत्या हुई हो। सच्चाई तो यह है कि अब प्रत्युषा बैनर्जी नहीं है और एक उभरता हुआ कलाकार इस धरती से उठ गया है। मित्रों, जब हम आत्महत्या की बात के कारणों पर विचार करते हैं या हत्या के कारणों पर विचार करते हैं, तब सामान्य तौर पर जो समाजशास्त्रीय इसका विश्लेषण होता है उस या मनोवैज्ञानिक विश्लेषण होता है या आर्थिक पक्ष पर विश्लेषण होता है, तो यही सब बातें सामान्य तौर पर आती हैं कि वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था और डिप्रेशन में चल रहा था चूंकि महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही थी, या आप बहुत ज्यादा आर्थिक संकट के दौर से वो गुजर रहा था, या उसके तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी, या फिर इस तरह के अफेयर्स वगैरह के मामले सुनने में आते हैं। मित्रों, मेरा यहां केवल एक प्रश्न है, एक छोटा सा प्रश्न है, कई प्रश्न और होंगे, लेकिन ये मेरा पहला प्रश्न है। वो ये है कि ये जो सारे के सारे संकट खड़े होते हैं या हम अपने लिए जो खुद खड़ा कर लेते हैं, मैं तो ज्यादातर यही मानता हूं मित्रों कि हम खुद अपने लिए संकट खड़े करते हैं, वो एक दौर होता है नादानी का, बेकूफी का या भावनात्मक आवेग का, जब हम इन चीजों को संभाल नहीं पाते और कोई एक निर्णय ले लेते हैं और वो एक निर्णय फिर इतने सारे गलत निर्णय लेने के लिए हमें बाध्य कर देता है कि हम अपने चारों तरफ मकड़ी का एक ऐसा जाल बुनते हैं जो दिखने में तो खूबसूरत लगता है लेकिन पता लगता है कि उस मकड़ी के जाल में हम खुद फंस चुके हैं। अन्यथा तो मित्रों, जीवन एक बहुत ही सरल रेखा की तरह है। प्रत्युषा बैनर्जी बहुत कम उम्र में जमशेदपुर से मुंबई पहुंच गई और वो भी मुंबई की माया नगरी में पहुंच गई। पहुंचते ही उन्हें इतनी बड़ी सफलता मिली, वो लोकप्रिय होकर के घर घर में बालिका वधू के रूप में एंटर कर गई। साथ ही उन्हें और दूसरे ऑफर मिल रहे हैं और पैसा भी उनके पास कहा जाता है कि काफी था, यानी कि वो आर्थिक रूप से भी सक्षम थी। तो सवाल ये उठता है कि फिर उन्हें ऐसा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, जब हम महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं और ये सब आप लोग पढ़ते भी हैं, तो दो चीजें कही जाती हैं। पहला तो यह है कि उनको निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए, तो वो एम्पावरिंग द वीमेन का सबसे पहली शर्त होती है कि वो निर्णय ले सके। और यह भी कहा जाता है कि निर्णय लेने की पात्रता तब तक नहीं आती है जब तक कि वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी न हो जाएं। अगर उनमें आर्थिक शक्ति होगी, वो कमाने लगेंगी, आर्थिक रूप से वो सक्षम हो जाएंगे, तो डेफिनेटली फिर निर्णय लेने का अधिकार उनको ऑटोमेटिक मिल भी जाएगा, ये कहा जाता है। उससे नारी सशक्त हो जाएगी। हम प्रत्युषा बनर्जी को बिल्कुल इनके अनुकूल पाते हैं। वो आर्थिक रूप से सशक्त थी, एम्पावर्ड थी, अगर उस डेफिनेशन के हिसाब से हम करें तो। वो अपने बारे में निर्णय लेने में भी स्वतंत्र थी, पूरी तरह से अपने बारे में निर्णय ले रही थी, अकेली रह रही थी। इसके बावजूद वो कमजोर क्यों थी? किस बात ने उनको इस बात के लिए उकसाया कि वो अपने जीवन को, जो इतना खूबसूरत था, जो इतनी सफलताओं से भरा हुआ था, जो इतना लोकप्रिय था, जो इतना टैलेंटेड था, उसको उन्होंने खत्म करने का निर्णय लिया? अगर उन्होंने स्वयं खत्म किया है तो, और यदि दूसरे को भी खत्म करने की इजाजत उन्होंने दी, मैं ये कहता हूं कि चलिए अगर दूसरों ने कहा, तो क्या वो अपने आप को उस कारण से विड्रॉ नहीं कर सकती थी जिस कारण के कारण ये नौबत आई? मेरा मतलब आप समझ रहे हैं कि मान लीजिए कि उनका बॉयफ्रेंड था और बॉयफ्रेंड के ऑलरेडी और दूसरी कई गर्ल्स फ्रेंड थी, या ये भी सुनने में आ रहा है कि वो ऑलरेडी विवाहित था, या जो कुछ भी है, जैसे ही ये सत्य सामने आया, बट नेचुरल है कि इससे पहले वो सत्य उन्हें मालूम नहीं था। पहली बात तो मुझे यही लगता है मित्रों, कि हम अपनी जिंदगी जीने भर, किसी अपनी जिंदगी को उस व्यक्ति के साथ या उस लड़की के साथ पूरी जिंदगी गुजारने का फैसला कैसे कर सकते हैं जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा मालूम नहीं है, जिसकी सच्चाई हम जानते नहीं है? ऐसा कैसे होता है? क्योंकि जिंदगी गुजारने की बात है, थोड़ा वक्त गुजारने की बात हो, साथ में रहने की बात है, या आपको फिल्म करने की बात है, तो ठीक है, लेकिन जिंदगी गुजारने का फैसला तो एक बहुत बड़ा फैसला होता है, और एक दूसरे के सच को पूरी तरह जाने बिना इस तरह के फैसले कैसे लिए जा सकते हैं, क्यों लिए जाने चाहिए? लेकिन चलिए मान लीजिए कि यह गलती हो गई, या जानने की कोशिश भी की गई तो यह सच सामने नहीं आया कि उसका भी कोई, वो शादीशुदा है या उसकी दूसरी और भी गर्लफ्रेंड है। लेकिन एक समय तो आया जब यह सच भी सामने आ गया, तो इस सच का हम फिर सामने आने पर इसका सामना क्यों नहीं करते? इसको हम विकृत मानकर अपना चेहरा उससे घुमा क्यों लेते हैं? उस पर नाराज क्यों हो जाते हैं? खुश क्यों नहीं होते कि उसने समय रहते हुए इस सच को आपके सामने खोलकर रख दिया? इसके लिए हम ईश्वर के आभारी क्यों नहीं होते हैं? देखिए, ये जो सच था सामने आना ही था, अभी नहीं आता, विवाह के बाद आ जाता, विवाह के कुछ सालों के बाद आ जाता। क्या नहीं लगता है कि तब तक स्थिति और भी बुरी तरह उलझ चुकी होती? तब निकलने का शायद कोई रास्ता ही नहीं रह जाता, और अगर रास्ता रहता भी तो बहुत ज्यादा जटिल होता। अभी वो रास्ता निकलने का कम से कम पहले की अपेक्षा थोड़ा तो आसान है। तो इस सिचुएशन के लिए जिस हमें जो आभार होना चाहिए, समय का या अपने भाग्य का या ईश्वर का या प्रकृति का, जिसका भी आप कह लीजिए, वहां पर हम उससे इतना ज्यादा झुंझला जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि अपनी जिंदगी को ही खत्म करने का फैसला कर लेते हैं, या फिर कह लीजिए कि हम उस पर यह दबाव ही डालते हैं कि नहीं नहीं जो पहले का सच है उसको तुम झुठलाओ और इस सच को स्वीकार करो। क्योंकि क्या पहले के सच को झुठलाया जाना उसके लिए भी उतना आसान है? और क्या वो अभी के सच को वास्तव में अगर कह भी देगा तो स्वीकार कर लेगा? तो फिर हम जो भविष्य का सच होना है, जो आगे घटित होगा, जो होगा ही, उसे हम अस्वीकार क्यों करते हैं? क्या हमें ऐसा लगता है कि अभी स्थिति संभल जाए तो बाद में स्थिति संभली ही रहेगी? हम इस बात को क्यों नहीं सोचते कि अगर स्थिति को अभी संभाल भी दिया गया तो वह संभालना भी एक तरीके से फिर से दूसरा धोखा देना होगा? ये केवल इस संकट को टालने की एक कोशिश होगी कि फिलहाल इसको टाला जाए और फिर यही संकट कुछ समय के बाद एक बहुत बड़े संकट के रूप में हमारे सामने आएगा। हम इस जीवन के सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? मित्रों, मैंने जानबूझकर इस विषय को आज अपने लाइफ मैनेजमेंट में चुना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे इस डेली ऑडियो गाइडेंस का जो सबसे बड़ा श्रोता वर्ग है वह युवा वर्ग है, जो लगभग इसी दौर से गुजर रहा होता है, उम्र के इस दौर से गुजर रहा होता है, उनके दिमाग में भी उनके भावनाओं में भी इस तरह के अनेक किस्म के समुद्र मंथन चलते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि यह एक ऐसा उदाहरण है, दुर्भाग्यजनक ही उदाहरण सही, लेकिन ऐसा क्रूर सत्य से भरा हुआ उदाहरण है जिसके माध्यम से आप सबको एक अपने बारे में सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा होनी चाहिए। इसीलिए मित्रों, इसको, इस घटना को लेकर के मैंने थोड़ा सा विश्लेषण आप लोगों के सामने रखा है। याद रखिए कि जीवन सत्य ही होता है, हमारे आंख बंद कर लेने से वह झूठ नहीं हो जाता और न ही वह गायब हो जाता है। थोड़ी देर के लिए हो सकता है, लेकिन फिर वो अगर लौट करके आएगा तो और भी अधिक विकराल रूप में आएगा, क्योंकि तब तक वह और भी अधिक जटिल हो चुका होगा। मित्रों, हम सब में जीवन के इस सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। इसका इलाज यह नहीं है कि या तो हम अपने जीवन को नष्ट कर दें या सामने वाले के जीवन को नष्ट कर दें, जिसकी वजह से लग रहा है कि हमारा जीवन नष्ट होने जा रहा है। जीवन को नष्ट करने का अधिकार हमें, हम में से किसी को नहीं है, फिर चाहे वह हमारा अपना ही जीवन क्यों ना हो। फ्रेंड्स, इसके बाद अब मैं आता हूं AIR न्यूज पर। कल आप लोगों ने AIR न्यूज सुनी होगी, इसमें जो दो तीन महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको लेकर के मैं आप लोगों के सामने थोड़ी सी बातें रखना चाहूंगा। फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ी जो खबर थी वो पनामा पेपर्स को लेकर है, एक बहुत बड़ी खबर है। आपने न्यूज में सुना और आज आप लोगों ने अखबारों में भी पढ़ा होगा और अखबारों में काफी विस्तार से इसके बारे में दिया हुआ है। इससे पहले हम सब स्विट्जरलैंड के बारे में सुनते थे। दरअसल दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसे हैं जहां अगर आप ब्लैक मनी भेजते हैं या आप कोई भी पैसा भेजें, उन्हें इससे मतलब नहीं है, उनके पास ब्लैक मनी और व्हाइट मनी की कोई डेफिनेशन नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर आप उनके बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वो आपसे पूछते नहीं है कि ये पैसा कहां से आया, उनके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि आप पैसा जमा कर रहे हैं, वो करेंसी सही भी करेंसी है और वो अपने बैंक में जमा कर लेते हैं और उससे उनकी अर्निंग होती है, या कह लीजिए उनकी अर्थव्यवस्था का वो बहुत बड़ा आधार होता है। नो डाउट कि इसमें बहुत से बैंक तो ऐसे भी हैं, आप सामान्यतः हम ये सोचते हैं कि जब हम बैंकों में पैसा जमा करते हैं तो बैंक उसके बदले में हमें ब्याज देता है, लेकिन बहुत से ऐसे बैंक हैं जो बदले में आपसे पैसा लेते हैं, मतलब उसकी सुरक्षा के पैसे लेते हैं कि हमने आपका पैसा रखा हुआ है तो हम आपके पैसे की सुरक्षा कर रहे हैं, उसके बदले में हम रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे बैंक से वो पैसा गायब हो जाता है तो हम तो आपको देने के लिए लायबल होंगे। ठीक उसी तरह से जैसे कि आपने देखा है कि बैंकों में लॉकर्स होते हैं, तो अगर कोई भी व्यक्ति उसमें से लॉकर्स थोड़ी सी जगह खरीदता है जहां लोग अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स और ऑर्नामेंट्स वगैरह रखते हैं लॉकर्स में, तो बैंक उसका वार्षिक किराया लेता है क्योंकि वो उसकी सुरक्षा करता है। इस तरह से बैंक उल्टे बहुत से ऐसे हैं जो आपके पैसा रखने के बजाय, रखने के एवज में आपसे पैसा लेते हैं, उसका किराया लेते हैं। तो मित्रों, इसी तरह से स्विट्जरलैंड का नाम आपने सुना जब पहले काले धन की बात आई थी, और अब ये पनामा के बारे में आप सुन रहे हैं। पनामा में एक जो फर्म है उसका नाम है, लॉ फर्म है, उसका नाम है फोनसेका मोसैक। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो अगर आप बार बार रट लेंगे, हालांकि सुनने में तो थोड़ा से अटपटांग से लगते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से थोड़ा सा इनको याद कर लेंगे तो आपके काम आएगा, फिर लिखने में जरा सा एक सॉलिड चीज हो जाती है। उनके दस्तावेजों से अब यह पता लगा है कि दुनिया का बहुत बड़ा, बहुत बड़ी रकम उन देशों में है और उसमें 500 लोग भारतीय हैं। और बट नेचुरल है मित्रों, ये अब कहने की बात नहीं रहेगी कि ये 500 भारतीय कौन हो सकते हैं, व्यक्ति के नाम पर हम नहीं जाते, लेकिन वही लोग होंगे जिनके पास इफरात पैसा है, और इफरात पैसा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिनके पास ब्लैक मनी है। देखिए, अगर आपके पास व्हाइट मनी है और आप कहीं भी उसे जमा करें, सरकार को या किसी भी तंत्र को कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि वो आपका व्हाइट मनी है और उसके बदले में आपने सरकार को बकायदे टैक्स दिया है, तो वो आपकी वैधानिक संपत्ति है, वैधानिक रुपया है, धन है, उसे आप कहीं भी जमा कीजिए, उससे किसी भी देश को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन आप देखेंगे कि एक मजेदार बात है कि अगर आपके पास वैधानिक रुपया होगा और आपको किसी बैंक में जमा ही करना है तो आप भारतीय बैंक को प्रीफर करेंगे, क्योंकि भारतीय बैंक उस जमा किए गए धन पर जितना अधिक ब्याज देता है उतना दूसरा कोई बैंक नहीं देता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बैंक में पैसा जमा करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास ये पैसा कहां से आया, और वो वैधानिक रूप से अगर आपके पास आया है तभी आप बता सकते हैं। अगर वो करप्शन से आया है, अगर वो ब्लैक मार्केट से आया है, अगर वो गलत धंधों से आया है, तो आप बता ही नहीं सकते कि आपका ये पैसा वहां से आया है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्योंकि अगर आप उस पैसे को अपने पास रखते हैं तो उसकी सुरक्षा का बहुत बड़ा खतरा होता है, छापे पड़ सकते हैं, चोर ले जा सकते हैं, जो नोटों की गड्डियां हैं सड़ सकती हैं, उनमें कीड़े लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अच्छा है कि इनको भेजो, इनको विदेशों में भेजो। इस तरह के 500 लोगों के पता लगे हैं। तो इसमें जो नाम आ रहे हैं वही है कि कुछ उद्योगपति हो सकते हैं, कुछ आर्टिस्ट हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ राजनेता हो सकते हैं, मतलब किसी भी कारण से जो पैसा कमाते हैं, जो बहुत ही बड़ा पूंजीपति वर्ग है वह वहां पैसा जमा करेगा, बट नेचुरल है। आपको मालूम है फ्रेंड्स कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अपने चुनाव अभियान में थे तो सबसे बड़ा उनका वायदा यही था कि वो इस देश में जो काला धन, जो यहां का धन जो बाहर रखा गया है विदेशों में है, वो उसको लेकर के आएंगे और काले धन पर प्रतिबंध लगाएंगे, ब्लैक मनी पर वो कंट्रोल कर लगाएंगे। सरकार उसके लिए कुछ कोशिश भी कर रही है। और आपको शायद ये भी याद होगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी की जो पहली कैबिनेट बैठक हुई थी, उस कैबिनेट बैठक में सबसे पहला जो निर्णय लिया गया था वो एसआईटी गठित करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति शाह बनाए गए थे, जो इस काले धन को बाहर से लाने के बारे में जांच करेगी और सुझाएगी और इस तरह के उपाय बताएगी। उस पर सरकार ने काम भी करना शुरू कर दिया है और कुछ नाम भी पता लगे थे। और उनको देखते हुए आपको यह भी पता मालूम होगा कि कुछ महीने पहले सरकार ने एक योजना की घोषणा की थी कि जिनके पास भी इस तरह का काला धन है वो उसे डिक्लेयर कर सकते हैं, और डिक्लेयर करने के बदले में उन्हें एक पर्टिकुलर रकम टैक्स के रूप में सरकार को देनी होगी, और फिर वो पैसा उनका व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो व्हाइट मनी हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है उसका कि सरकार ने जितना एस्टिमेट किया था, कि सरकार का एस्टिमेशन था कि लगभग 500 अरब लगभग इतना काला धन विदेशों में जमा होगा, 500 अरब डॉलर काला धन विदेशों में जमा है, और जो डिक्लेयर हुआ है वो हार्डली जो है लगभग 4100 करोड़ रुपए का केवल डिक्लेरेशन हुआ है। मतलब बहुत थोड़ी सी जो रकम है वो लोगों ने डिक्लेयर की है। मतलब एक मौका दिया गया था कि वो अपने काले धन को व्हाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने वो नहीं किया। अब ये पनामा पेपर्स से फिर पता लग रहा है कि और भी काला धन जमा है, और वो स्विट्जरलैंड में नहीं बल्कि और इधर जमा है। तो डेफिनेटली आपने देखा कि इस पर तुरंत ही एक्शन हुआ है, कि वित्त मंत्री जी का बयान आपने न्यूज में सुना कि वित्त मंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस पर एक्शन लिया जाए, और उन्होंने तुरंत तीन विभागों की एक समिति बनाई है। अब वो इस पर विचार करेगी, उपाय सुझाएगी, और देखते हैं कि हम क्या एक्शन इस पर लिया जाएगा। मित्रों, सच पूछिए तो ये भारत की अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और ये बहुत बड़ी बीमारी है जिसे आप कैंसर की बीमारी कर सकते हैं। क्योंकि सरकार जो आर्थिक नीतियां बनाती है, देखिए सरकार की आर्थिक नीतियां जो बनती हैं वो मुद्रा के डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर बनती हैं। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका काम ही है मुद्रा के डिमांड और सप्लाई पर नियंत्रण रखना। तो जिस मुद्रा पर वो नियंत्रण रख सकता है, डिमांड एंड सप्लाई पर, वो मुद्रा सिर्फ व्हाइट मनी वाली मुद्रा है, क्योंकि वो वही अकाउंटेड मनी है, उसी के बारे में वह जानता है। जो ब्लैक मनी है, जिसने एक तरह से समानांतर अर्थव्यवस्था का रूप ले लिया है, एक पैरेलल इकोनॉमी के रूप में जो पनप रही है, उस पर तो सरकार का नियंत्रण है ही नहीं। तो सरकार कोई भी नीति बनाती है तो उसके पास है कि हमारे पास इतना रुपया है, मार्केट में इतना सर्कुलेशन में है, उसके आधार पर वो नीति बनाती है। लेकिन जब वो नीति इंप्लीमेंट होती है या लागू हो जाती है, तब वो देखती है कि ये जो ब्लैक मनी है ये आकर के उस पूरी की पूरी नीति को ध्वस्त कर देती है। इस तरह से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर से आप एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार का नियंत्रण, जो मजबूत नियंत्रण होना चाहिए, वह कमजोर पड़ जाता है। और इसके साथ ही साथ नो डाउट कि जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी से जो प्रवृत्तियां पनप रही हैं, जो पूंजीवादी प्रवृत्तियां, जो विलासिता और जो अपराध और ये जो सारी चीजें, यहां तक कि आतंकवाद तक से इसको जोड़ करके देखा जाने लगा है, वो एक अलग तरीके की समस्या को जन्म देती है। मित्रों, एक शब्द जो क्रोनी कैपिटलिज्म शब्द जो आप लोगों ने सुना होगा, ये क्रोनी कैपिटलिज्म की ये बहुत बड़ी देन है ब्लैक मनी। ये माना जाता है कि समाज का जो उच्च वर्ग है, जो शक्तिशाली वर्ग है, जो प्रभावशाली वर्ग है, वो आपस में एक गिरोह सा बना करके, गठबंधन करके इस तरह के काले धन को जन्म देता है। एक दूसरे की मदद करके वो इस तरह के ब्लैक मनी जनरेट करते हैं और फिर जनरेट करने के बाद उसी को दूसरे देशों में भेज देते हैं या इस तरह के गलत कामों में लगाते हैं। मित्रों, एक बड़ी विचित्र सी बात होती है कि आखिर में इस काले धन को रोका क्यों नहीं जा सकता? क्या आपको लगता है कि रोका नहीं जा सकता? यह केवल भारत की समस्या नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों की भी समस्या है। यह बात अलग है कि वहां की समस्या थोड़ी सी कम हो सकती है आनुपातिक रूप से, जो उनकी टोटल अर्थव्यवस्था है उसके पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था के अनुपात में काला धन का प्रतिशत थोड़ा सा कम हो सकता है, और भारत में तो यह प्रतिशत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं कि कुछ नहीं, केवल एक राजनीतिक साहस चाहिए। अगर किसी में पॉलिटिकल विल हो जाए और वो फैसला कर ले कि नहीं, इसे रोका ही जाना चाहिए, इसे रोका जा सकता है, तो सरकार के लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन उस पॉलिटिकल विल पर फिर कितने तरह के प्रेशर ग्रुप काम करते हैं, किस किस तरह का एनवायरमेंट बनता है, उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब व्यावहारिक स्तर पर चीजों को लागू की जाती हैं तब स्थितियां बिल्कुल ही विपरीत हो जाती हैं। तो मित्रों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके बारे में मैं आपको एक रेफरेंस की याद दिलाना चाहूंगा जो दैनिक भास्कर ने अपने एडिटोरियल में कोट भी किया है। एक व्यक्ति हुए हैं रेमंड डब्ल्यू बेकर, आप चाहेंगे तो इसे नोट कर लीजिएगा और ये क्लिपिंग्स मैं आपको नॉलेज सेंटर में प्रोवाइड भी कर रहा हूं। ये अमेरिका के बहुत बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है, कैपिटलिज्म एकिलीज हील, ये भी इसमें लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने एक विश्लेषण किया था, एक एनालिसिस किया था और एनालिसिस करने के बाद ये बताया था कि दुनिया का जो एक इकोनॉमी जो स्ट्रक्चर है, जो वित्तीय ढांचा है, वो वित्तीय ढांचे का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स की चोरी, आर्थिक नियमों के उल्लंघन, अपराध और आतंकवाद पर टिका हुआ है। सोच करके देखिए। और फिर उसमें लिखा हुआ है कि विकासशील देशों का बहुत सा पैसा, जो डेवलपिंग कंट्री है उनका बहुत सा पैसा काले धन के रूप में इस तरह से विकसित देशों में जाता है और विकसित देशों की कैपिटल बनाता है। मतलब वहां की जो विकसित देशों की जो पूंजी है उसका बहुत बड़ा भाग विकासशील देशों से काले धन के रूप में आता है। यह उन्होंने विश्लेषण दिया था और इसमें एडिटोरियल में लिखा है कि यह विश्लेषण इस पनामा पेपर्स को देखते हुए सही मालूम पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये एक एडिटोरियल कमेंट है, साथ ही साथ इकोनॉमिक टाइम्स ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी लिखा है, मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया है, इसे भी आप देख लेंगे। और मुझे ये लगता है कि ये चूंकि दूसरा बड़ा खुलासा हुआ है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो आपको मालूम होना चाहिए काले धन को लेकर के, और आपके उसमें सिलेबस में स्पेशली मेंशन भी किया हुआ है। दोस्तों, तो दूसरी खबर थी जो दो तीन छोटी छोटी खबरें हैं, उसमें जम्मू कश्मीर में आपको मालूम है कि महबूबा मुफ्ती वहां की चीफ मिनिस्टर बन गई हैं, जो वहां की पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी है। वो पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई है और लंबे समय से वहां सरकार नहीं थी, अब सरकार बन गई है। एक छोटी सी खबर थी। और फिर आपने ये भी देखा है कि जो कोर्ट है उसने रुंगटा को, जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, कोल घोटाले के मामले में 5 साल की कैद की सजा सुनाई थी। ये घटना केवल इस मायने में इंपॉर्टेंट है कि जब तक सही मायने में आर्थिक अपराधों के प्रति इस तरह के कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक शायद हम आर्थिक अपराधों को रोकने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो सरकार को इसके बारे में अब थोड़ी सी कठोरता से विचार करना ही होगा। तो मित्रों, न्यूज में इतनी ही बातें हैं। न्यूज़पेपर में एक आज जो सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स हैं मित्रों, उसके बारे में मैं बहुत विस्तार से तो चर्चा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वक्त उतना नहीं है, वो इश्यू है कि केंद्र और राज्य में चुनाव एक साथ होने चाहिए। कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिर से ये बात कही थी और फिर उठाई, और ये मुद्दा लगातार इससे पहले भी उठता रहा है, आज से नहीं बल्कि सच पूछे तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है 1983 में ही उन्होंने ये बात कही थी कि जो संसद हैं और राज्य के विधानसभा हैं उनके चुनाव एक ही साथ कराए जाने चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि जब अलग अलग चुनाव कराए जाते हैं तो कितना तो पैसा उसमें बर्बाद होता है। कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाने के कारण फिर राज्य कोई निर्णय नहीं ले सकते, एडमिनिस्ट्रेटिव में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव उस मशीनरी में कोई तबादले नहीं कर सकते, तो पूरी तरह से एक मशीनरी एक तरह से थम से जाती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में लग जाता है और फिर पूरा का पूरा एक सरकार थम जाती है। और आप देख रहे हैं कि लगातार अब तो यह है कि चुनाव आयोग लगातार ही कुछ न कहीं कहीं न कहीं के चुनाव कराने में बिजी रहता है, कभी राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, कभी केंद्र के चुनाव हो रहे हैं, कभी उपचुनाव हो रहे हैं। तो इस तरीके से न केवल ये पैसे की ही बर्बादी हो रही है बल्कि हमारे जो आर्थिक विकास की गतिविधियां हैं वो भी थम जाती हैं। और इसको लेकर के अब ये बात की जाने लगी है कि ये जो चुनाव हैं सभी एक साथ होने चाहिए, और कुछ देश हैं दुनिया के जहां ये सिस्टम अभी काम भी कर रहा है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका है, स्वीडन है, इंग्लैंड है, जहां पर चुनाव एक ही साथ होते हैं। इसको लेकर के एक दो आर्टिकल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। एक तो आर्टिकल हमारे मंत्री जी का ही है जो संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं वेंकैया नायडू जी का, और दूसरा हमारे कुरैशी जी का है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं इंडियन एक्सप्रेस का। मैंने इन दोनों में को अंडरलाइन कर दिया है, आप लोग देख लेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी डिटेल्स में पढ़ना अच्छा रहेगा, मुझे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट मालूम पड़ रहा है। तो मित्रों न्यूज़पेपर्स के बारे में इतना ही, जो दूसरे और कुछ क्लिपिंग्स हैं वो मैं नॉलेज सेंटर पर प्रोवाइड कर रहा हूं। अब मैं आता हूं ईमेल पर। तो सोनू कुर्मी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने एमपीपीएससी का मेंस क्वालिफाई कर लिया है। सोनू, हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुम इंटरव्यू भी क्वालिफाई करके हम सबको बहुत जल्दी से जल्दी अच्छी खबर दो। चंदन पासवान की मैं इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने किस तरीके से एक फोन आने के बाद उनको आर्थिक मदद की और इससे उनको बहुत संतोष मिला। और ठीक इसी तरह से जो संदीप कुमार हैं लखनऊ के, जब एक जगह ब्लड देने की बात हुई तो उनके पूरे टीम ने जाकर के उनको ब्लड उपलब्ध कराया, और इसके बाद उनके परिवार के सदस्यों की आंखों में जो उन्होंने आभार देखा उससे उन्हें बहुत ही संतोष की प्राप्ति हुई। तो संदीप और आपकी पूरी टीम की मैं बहुत मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो आपके अंदर इसी तरह के उदार भावों को लगातार विकसित करता रहे। तो दोस्तों बहुत से और मेल आए हैं, उन सभी मेल भेजने वालों के प्रति बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, आशीष कुमार भागलपुर बिहार से, सेजुल कुमार, सागर मलिक शामली उत्तर प्रदेश से, तनुश्री मिश्रा पटना से, पूजा राजपूत प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, विशाल वर्मा लखनऊ से, संदीप कुमार लखनऊ से, मनोहर दत्त मिश्रा पटना से, पल्लवी सिंह, शिवेंद्र आनंद, कृष्ण कुमार इलाहाबाद से, अरविंद कुमार लोधी नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से, सुनील लांडगे इंदौर मध्य प्रदेश से, पूजा शर्मा भोपाल से, नवल राहुल कुमार, युवराज सिंह, सूरज राजपूत सहादा महाराष्ट्र से, रोहित गुप्ता रक्सौल बिहार से, और सौरभ प्रताप सिंह लखनऊ से। आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही आज का यह हमारा डेली ऑडियो गाइडेंस यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।